आप सभी भाई बहने भट्टी करने आए हैं। भट्टी शुरू हो गई या अभी होना है? जो कहते हैं हो गई है वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा। मैंने कल बताया था तो जब हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा को पहचाने तो हमको कहा गया कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो जब मैं पहले ज्ञान में आया तो मैंने यही पूछा कि आप हमको राजयोग सिखाएंगे तो फीस क्या देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर मैं प्राइवेट टीचिंग भी कर रहा था। AMI कहते हैं, जो इक्वल टू BE होता था, इसलिए टीचर मना पैसे तो लेते हैं, ट्यूशन देना है तो पैसा लेते हैं, तो राजयोग सिखा रहे हैं कुछ तो लेते होंगे। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बस 5 खोटे पैसे लेते हैं। तो मैंने कहा 5 और खोटे पैसा, ऐसा भी होता है? क्योंकि उन दिनों में पैसा जो कॉइन होता था उसको पैसे कहते थे, नए पैसे नहीं है तो वो दूसरा पैसा होता था उस टाइम पर। तो मैंने कहा वो कोटे पैसे क्या है? तो बोला हम बताएंगे आपको। तो जब ब्रह्मा कुमार कुमारी हम बने, आज दुनिया में कहते हैं कि वो सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई बैज भी लगाते हैं, तो वो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। और ज्यादा पूछते हैं तो कहते हैं वो ओम शांति वाले हैं ना, तो जो मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, तो वो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां का परिचय। पर जब हम लोग कोर्स लिया तो हमको मालूम पड़ा 5 कोटे पैसे तो क्या चीज है। तो जो मुख्य धारणा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो है, ब्रह्मचर्य के साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो कहते हैं हम, तो तब हमारी समझ में आ गई कि ये तो कोटे पैसे तो नहीं है, ये तो हम सबके अंदर जैसे वो संपत्ति के रूप में था। क्रोध करना समझते हैं उसके बिना तो दुनिया चलेगा ही नहीं, बच्चों को ऐसे कैसे कंट्रोल करें हम, तो 1-2 में भी अपने कार्य चलाना हो तो गुस्सा करने बिना कैसे हो सकता है। तो जैसे एक नेचुरल स्वभाव हम बच्चों का बना हुआ था कि 5 कोटे पैसे है, परंतु हमको ज्ञान में ये कभी नहीं कहा। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो, ये शब्द नहीं था। सदा यही सिखाते थे, हम आत्मा पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, स्वयं सर्वशक्तिवान परम पूज्य परम पिता परमात्मा के संतान है, हम शांत स्वरूप आत्मा है। जब भी योग करना हो तो अपने आप को मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो पॉजिटिव सिखाया जाता था। हमको कभी महसूस भी नहीं हुआ कि भाई ये विकार जो है, पांच विकार, ये है या नहीं है या गया, वो मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि ओनली पॉजिटिव। प्यार करना, स्नेह रखना, रेस्पेक्ट देना, अहंकार कहां से आवे? जब हरेक को मैंने मम्मा से सीखा, छोटे बच्चे एकदम, मम्मा उनसे पूछते थे आप कैसे हैं, छोटे बच्चे, और मम्मा जगदम्बा वो उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं। अब तो बात बात में तुम कैसे हो, तो फर्क कितना। तो हम जब दूसरों को सम्मान देने जाते हैं तो अपना अहंकार कहां रहता है? तो प्रकाशमणि दादी जी से मैंने एक बात सीखा, हम जानते हैं नंबर वन तो जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, पर सेकंड में भी कोई हो तो वो भी हम जानते थे, हमारी दादी थी। ऐसी दादी जो सारे विश्व की मां बनी, सारे विश्व में बाबा का ज्ञान प्रसार करने का निमित्त मां बनी, प्रकाशमणि दादी। तो ऐसी दादी जब हम संतों का महासम्मेलन रखा, बाबा ने कहा कि कभी उनको बुलाओ, तो जब बड़े बड़े संत आते थे उनको तो पहले उनके अपने सिंहासन के हिसाब से हमको बिठाना पड़ता था, शंकराचार्य जी का सबसे ज्यादा थोड़ा सा ऊंचा, जैसे उनकी प्रोटोकॉल होती है तो वैसे हम सबको बिठाते थे। और दादी जी आते हैं तो जहां से संत बैठना शुरू किए हैं स्टेज पे, और वहां से दादी दोनों हाथ जोड़ के झुकती थी, ऐसे झुकते हुए उन संतों के सामने जब आते थे, ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ एक शंकराचार्य ही होते थे, बाकी सब उठ करके दादी जी जैसा जितना झुकते थे उतना वो लोग भी झुकते थे और दादी के सामने झुकते थे। तो हमने प्रैक्टिकल में वो देखा, किसी को सम्मान कैसे दी जाती है, या हम झुकते हैं तो सामने वाले भी झुकते हैं। तो शायद आपने जो फिल्म अभी जो भाग्य विधाता बना, तो उसमें जब एक मिनिस्टर को, सीएम को, चीफ मिनिस्टर को बाबा के सामने लाए, तो किस तरह से बाबा ने उसको रेस्पेक्ट दी, अपने संदल पर बैठने कहा, वो नहीं बैठे तो बाबा नीचे बैठ गए, तो वो भी नीचे बैठ गया। वो तो कभी नीचे बैठने वाला आदमी नहीं था, तो सदा ही कुर्सी चाहिए, तो हम कुर्सी ऑफर करने गए तो बोला नहीं नहीं, तो बाबा नीचे बैठे तो वो भी नीचे बैठ गया। अर्थात हम बट्टी करने आए हैं, तो यहां से हम भी ऐसे बन के जाएंगे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो है, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, मम्मा के बच्चे, दादियों के हम बच्चे, तो हम भी दूसरों के सामने पहले हम झुकेंगे, ये नहीं कि भाई वो झुके, अभी थोड़ा सा भक्ति मार्ग का शुरू हो चुका है, जो भी आते हैं तो वो पहले आपका पांव पड़ने के लिए आते हैं, तो क्या आप उसको पांव पड़ने देवे? नहीं, दादी तुरंत उसको पकड़ देते, नहीं बाबा भी कभी झुकने नहीं देते थे, पर समय ऐसा आ गया है। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी ब्रह्मचर्य एक बात सिर्फ नहीं, अंदर ही अंदर हम बच्चों को भी ये जो पांच कोटे पैसे जो कहते हैं उससे अपने आप को एक पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं ही तो फरिश्ता बन रहा हूं, मुझे ही अभी फरिश्ता बन के ऊपर जाना है, संपूर्ण बन के ऊपर जाना है। जिन दादियों को मैंने देखा, चाहे प्रकाशमणि दादी हो, चाहे मम्मा हो, मम्मा को भी देखा, बाबा को भी देखा, दादियों को भी देखा, गुलजार दादी का भी 4 साल साइलेंस का उन्होंने प्रैक्टिस किया था, जो संपूर्ण बनने के लिए साइलेंस पावर के अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए इस बट्टी से आप लोग अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो है हाईएस्ट पावर, जिसको हम कहते हैं, भले सहन शक्ति है, समाने की है, बहुत शक्तियां है, परंतु मैं समझता हूं सर्व शक्तियों का मदर ऑफ ऑल पावर्स शक्ति है पावर ऑफ साइलेंस। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, रमण महर्षि का नाम बहुतों ने सुना होगा, जो गुजरात में मोरारजी देसाई थे, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी थोड़े टाइम के लिए थे। वो जब प्राइम मिनिस्टरशिप से रिटायर हुए तो उन्होंने एक दिन रमण महर्षि जी के पास गए, वो भी अपॉइंटमेंट लेके गए। तो जब उनके पास पहुंचे, उन्होंने अपना परिचय देते हुए, मोरारजी देसाई हूं मैं आपका समय के अनुसार मैं आया हूं। उन्होंने कहा बैठिए, बड़े खुशी से बैठ गए। 5 मिनट हुआ तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आया हूं आपके पास। हाँ हाँ बैठी, और 5 मिनट बैठे, क्योंकि उनके पास 20 मिनट ही टाइम था। तो इन्होंने कहा बैठिए, तो 10 मिनट तो पूरा हुआ, फिर उन्होंने हाथ छोड़ा, स्वामी जी हाँ हाँ बैठिए, तो और 5 मिनट भी पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा आपके आशीर्वाद, हाँ हाँ बैठिए। तो 20 मिनट पूरा हुआ तो कहा मुझे आगे का कार्यक्रम के, भले भले आप अपना कार्य कीजिए। तो कहा ये क्या हुआ? तो जब वापस पहुंचे तो जो उसकी इंतजार कर रहे थे और सबको मालूम था कि ये तो रमण महर्षि जी से मिलने गए थे, तो कुछ तो आशीर्वाद लेके आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। तो वो इतना खुश थे, तो मुरारजी देसाई जी ने बताया, हाँ मैं गया, मैं इनसे मिला, 20 मिनट पूरा मैं उनके साथ था, परंतु मेरी जिंदगी में मैं कभी भी इतनी शांति का महसूस कभी नहीं किया जो उनके पास जो किया। तो साइलेंस पावर क्या होता है उसका उन्होंने अपना अनुभव से अपने साथियों को बताया कि भाई उसमें कितनी शक्ति है साइलेंस में, तो जीवन के लिए वो एक बहुत बड़ा लेसन है। हम चुप हो सकते हैं पर मन भी चुप हो, शांत हो, उसको भी शांत करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो आप जहां रहते हैं वहां तो कारोबार तो करना ही पड़ेगा, सुबह उठते ही शुरू होती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मन में तो संकल्प चलता ही है, वो तो चलना शुरू कर देता है, मेरा मन दूसरे का नहीं। तो संकल्प भी शांति अशांति का कारण होता है, ये मेरा अनुभव है अभी। तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में थोड़ा ऊपर होता है, फिर कभी नीचे होता है। तो मैं जब डॉक्टर को कहा तो कहते हैं कि भाई ये आपको ही अपने अंदर देखना है, ये ऊपर कब चढ़ता है, नीचे कब होता है। तो जब हम साइलेंस में रहते हैं तो खुशी में रहते हैं, तो संकल्प भी साइलेंस में रहता है, खुशी में रहता है। पर कोई बात आ गई, कोई ऐसी बात, तो ये चढ़ना शुरू होता है। प्रॉब्लम दूसरों का सुन हम रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम नहीं, पर जब कोई अपनी बात सुनाते हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वो हुआ, आज ये शरीर छोड़ दिया। कोरोना के टाइम पे आप देख सकते थे हर घर में। तो यहां जो बट्टी में हम आए हैं, तो दुनिया को छोड़ के आए हैं आप, कोई वो दुनिया नहीं है जो आपको सोचना पड़े, आपको संकल्प करना पड़े, नहीं। तो वो जो साइलेंस है, मन का साइलेंस, वो भी एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो है जो ओम शांति कहने वाले हैं। वो नहीं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, वो ओम शांति नहीं। हमारे निर्वर भाई लास्ट तक, लास्ट दिन तक भी सुबह उठते ही वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते थे अपने अंदर, ओम शांति नहीं पर ओ अपने आप में। सो दूसरी कुछ भी नहीं करते, जितना समय वो करते हैं उनको बहुत खुशी होती थी, अच्छा लगता था। तो मैं आत्मा कौन हूं, ओम शांति का मैं आत्मा एक शांत स्वरूप हूं, उसकी अनुभूति वो करते थे। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है वो एक पावर ऑफ साइलेंस का है। तो आजकल क्या होता है, कोई भी जैसे गीत सुना उससे भी कुछ साइलेंस मिला। हम भी ज्ञान में पहले आए, मन को शांत करने में गीतों का भी बहुत श्रेष्ठ पार्ट है। मैं कभी सोचा नहीं था कि ड्रामा में ये भी पार्ट बाबा मुझे देगा। तो लगभग 4000 गीत बने हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो सब तक पहुंचाने का कार्य भी, बनाने का और पहुंचाने का कार्य भी बाबा ने दिया। तो जब 3 मिनट के लिए भी हम गीत सुनते हैं तो मन ही शांत हो जाता है, तन भी शांत हो जाता है। तो आप सभी यहां से जाएंगे तन और मन दोनों शांत हो जाएगा, प्लस तो बाबा ने कहा था शांत तो हो जाता है, जैसे संकल्प होता है तो शरीर का भी शांत हो जाता है। कोई कोई थोड़ा फास्ट चलते हैं, उनका एक नेचर ही थोड़ा सा फास्ट होता है, परंतु बाबा के बच्चों का साइलेंस पावर 2 तरीके से दिखता है। ये शांत स्वरूप आत्मा है, वो है चलन और चेहरा। याद है ये बोल बाबा ने कहा है। तो चलन पहले जिस तरह से करते थे, किसी किसी को ऐसा, तो वो थोड़ा सा शांत, कुछ भी हो क्या भी हो अपने हिसाब से ही करते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, वो एक्यूरेट होता है, अच्छा होता है वो। पर जब दूसरों से मिलते हैं तो शांति के बाद जो एक गुण है, बिना शांति के सुख नहीं होता है, खुशी नहीं होती है। शांत है तो खुशी भी होती है। तो इसलिए जब भी कभी दूसरी आत्मा के सामने आप जाते हैं या कोई आपके सामने आकर मिलते हैं, तो आप उनको देने वाली पहला वरदान है चेहरा खुश। हम दादियों के सामने जाते थे, प्रकाशमणि दादी की, कितनी भी दादी बिजी हो, कुछ भी हो, कितने लोग भी बैठे हो, पर समझो हम सामने गए तो दादी एक नजर भी हमारे तरफ कर लेती है, तो उस समय पर चेहरा भी दादी जी के ऐसा खुश नजर आता था, जो ऐसे संतृप्ति हो जाती थी कि भाई जिस काम के लिए आए, वो काम हो या ना हो, पूछे या दादी किसी में बिजी होंगे या कुछ भी है, परंतु एक शांति का और खुशी का जो नजर एक पड़ा तो उसका आधा तो दिल भर जाता है, खुशी हो जाती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो आप इस भट्टी से जब भी जाएंगे, वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परंतु खुश है और शांत है। एक होता है बाहर कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, वो एक शांति है, अच्छा है, वो भी वाइब्रेशन है, परंतु आत्मा की जो शांति और वाइब्रेशन जो है वो एक अलग ही चीज है। वो थोड़ा सा अभ्यास करने से आ जाता है, क्योंकि हम है ही शांत स्वरूप है। तो इसके लिए आपको कोई हट करने का या कोई वो नहीं, वो सहज रूप से सरल रूप से आ जाता है। एक है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है, क्योंकि फ्यूचर जो है बाबा की प्रत्यक्षता की है। कौन करेगा? बच्चे, हम बच्चे। तो कैसे करेंगे? तो आपकी खुशी खुशी के चेहरे से और एकदम शीतल संतोषी माता, शीतल देविया। तो कहा जाता है मंदिर में जाते हैं, रोज जाते हैं भगत, क्यों? एक ही कारण है, जो देवी का हाथ ऐसा है। तो समझो किसी कारण से देवी के हाथ नीचे आ गया तो कहेंगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो इसी प्रकार हम बच्चों का भी एक रस अवस्था जो है वो एक है खुशी और दूसरा थोड़ा सा शरीर का भी थोड़ी शांति का। तो हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा इस सृष्टि में किसी न किसी चक्कर में है, संकल्प में है, कारोबार में है। जहां भी जाओ आप देखो बिजी है, बिजी है। तो बाबा ने हम बच्चों को इजी और बिजी होते हुए भी हम एक ही रस अवस्था है, खुश भी है और शांत भी है। तो मैं जब ज्ञान में आया था 1960 में, तब तक 10 साल हो गए थे, जो दादियां सभी आबू में आकर के अपना अपना सेटलमेंट हो गए थे। बाहर सेवा करने के लिए बहुत थोड़ी बहनें गए थे, बाकी सब थे वहां। पर एक एक को देखने में हमको ऐसा लगता था जैसे ये सब फरिश्ता है, कोई ऊपर से आए हैं। तो आज भी आप सबको एक स्टैंप लग गया है, हम भी मधुबन से आए हैं, आबू से आए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर से होके आए हैं। तो क्या वरदान देके जा रहे हैं? तो खुशी की चेहरा, क्या दिया, क्या मिला, ऐसा क्या हो गया इन्हों को, इतना खुश हो गए, कुछ तो वहां मिला होगा इन्हों को। तो बाबा से कभी कभी पूछते थे पत्रकार या कोई, बाबा आपका ये संस्था बढ़ रहा है, आप बनाते जा रहे हैं बिल्डिंग, ये वो, ये पैसा कहां से आता है? बाबा हंसते हंसते बोलते थे कि वो जो पीछे कुआ है ना हमारा, तो हम वहां से लेते हैं, वहां से मिलता है। तो साबले वाले हंसते थे, आपको एक बच्चे दो बच्चे हैं तो आपने मकान किया है? तो बोलता है हाँ। तो जिनका हजारों बच्चे हैं तो कितना बड़ा मकान बनाएगा वो? तो फिर वो समझ जाते थे कि भाई ये कैसे सब बनता है। तो इसी प्रकार हम बच्चे भी खुश रहना है। हमको स्वयं भगवान मिला वो इतना आसान नहीं है। अभी तक तो हम बोलते आए, पत्र बांटते आए, हर शिवरात्रि पे बांटते हैं, परमात्मा स्वयं आज आ गया है, सब है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इससे आगे नहीं पीछे नहीं। तो परंतु जब तक हम सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ये जो झलक नहीं आता है, एक तो पावर ऑफ साइलेंस का, दूसरा खुशी का चेहरा, सब कुछ मिला है। बाबा जिसको कहते हैं ज्ञान रतन, हमसे कई बार पूछते हैं लोग, तो अब तो आपका भगवान नहीं आ रहा है, अव्यक्त बाबा भी नहीं आ रहा है, और ऐसा कोई पहले जैसा संदेशी भी कोई दिखते नहीं है कि भाई जो रोज आपको एक नई बात सुना दे या हफ्ते में एक बार सुना दे कि भाई अब अगले हफ्ता आपको ये करना। क्योंकि अव्यक्त बाबा का जब हम वन मुरली सुनते थे, उसको जब तक नेक्स्ट मुरली आवे तब तक इसको अभ्यास करने का, अपने जीवन में धारण करने का हम लोग प्रयास करते थे। तो अब तो वो तो कुछ है ही नहीं अभी, तो अभी क्या कर रहे हैं आप, अभी आपका कैसे चल रहा है? क्योंकि अभी बाबा ने सृष्टि की परिवर्तन का जो कार्य है उसमें बिजी हो गया है। यहां तक टीवी वाले कहते हैं अरे तीसरा विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका है, हम नहीं कहते हैं, वो लोग कहते हैं। तो बाबा ने अपना कार्य, कई बार मुरली में आपने सुना होगा बच्चे प्रकृति मेरे से पूछ रहे हैं, तो हम करें हमारा काम सफाई करने का, तो हम बच्चे कहते नहीं बाबा अभी थोड़ा टाइम और दीजिए, तो हम थोड़ा सा जल्दी हम बनेंगे। पर अब तो बाबा पूछता ही नहीं है। दो तीन दिन पहले फर्स्ट टाइम 8.8 भूकंप हुआ रशिया के पास में सागर में, इतना बड़ा हुआ नहीं है कभी, अभी कई साल पहले कहीं हुआ हो भुज जैसे जगह में एक बार ऐसा भयंकर था वो भी, नहीं तो 8.8 तो कभी होता नहीं था। मतलब प्रकृति के बिल्कुल बाबा ने छुट्टी दे दिया है कि भाई आप अपना काम शुरू करो, क्योंकि सतयुग आना है भाई। ये संगम केवल कलयुग का और सतयुग का बीच का संगम है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कलयुग में ही 100 साल पूरा हो जाएगा, नो, कुछ समय उसको भी दे रहे हैं। प्रकृति को कम से कम 5 साल चाहिए, साइंस कह रहा है कि भाई फिर से वापस आप धरती को ऐसा ही सुंदर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार ये समय ऐसा है जो बाबा के मुरली आपको सब कुछ बताया बाबा ने, ऐसा कोई चीज नहीं है तो अंत कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, सब कुछ हर प्रकार के बाबा ने बताया है। फिर भी भविष्यवक्ता जो होते हैं इस समय पर जो दुनिया में मशहूर जो है, वो भी यही बात बता रहे हैं कि भाई ये तारीख से ये होगा, ऐसा ऐसा होगा। फिर वो कहते हैं देखो हमने जो कहा वो हुआ है, ऐसा हुआ है, ये बता रहे हैं। तो मैं केवल इसीलिए बता रहा हूं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की प्रत्यक्षता तो हो गई है, मैं कह रहा हूं फिर से हो गई है। भारत के प्रेसिडेंट कौन है? ब्रह्मा कुमारी है, सारी दुनिया को मालूम है। जब उन्होंने पहले पहले प्रेसिडेंट हाउस में गए तो पहला काम उन्होंने यही किया, अंदर जाते ही बाबा के ट्रांसलेट मंगाया, उसको रखा सामने और बैठ गए नीचे प्रेसिडेंट, और पीछे कौन है, मिलिट्री के टॉप लोग थे, क्योंकि मिलिट्री का कमांडर है प्रेसिडेंट, तीनों मिलिट्री के कमांडर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, जो सेक्रेटरी वगैरह जो है वो सारा देख रहे ये क्या हो गया। और नेक्स्ट एक्शन उन्होंने किया जो इस घर में नॉन वेज नहीं आएगा, प्याज लहसुन तो है ही, परंतु नॉन वेज का नहीं आए, क्योंकि वहां जो भी प्रेसिडेंट आते हैं उनका भोजन उनके पास होता था। तो हमारे मोदी जी भी ऐसे हैं, परंतु प्रेसिडेंट ने पहले से ही वहां लोगों को बता दिया। तो आज सारे विश्व में लोगों को मालूम हो गया है कि वह प्रेसिडेंट कौन है। तो ब्रह्मा कुमारियां अनेक बातों से, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी प्रचार हो गया है वहां, हम लोगों को इन्होंने कई प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाए हैं, और पीस अवार्ड भी हम लोगों को कई बार दिए हैं प्रकाशमणि दादी होते हुए। और जो दादी का, प्रकाशमणि दादी का और जानकी दादी का जो स्पीच है, 3 मिनट का स्पीच जानकी दादी ने अंग्रेजी में किया, तो जे से मैंने सुना। विवेकानंद जी का भी जो भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने जो सुनाया वो भी सुना हूं, और दादी जी का 3 मिनट का भी सुना हूं, बहुत पावरफुल था। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों की प्रतीक्षता तो बाबा ने पहले से ही कर दिया है, पर हमारे बाप का परिचय या बाप की प्रत्यक्षता हम बच्चे करने में अभी भी थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपना अच्छी जीवन का, बहुत पवित्र जीवन का, शुद्ध जीवन का, ज्ञान युक्त जीवन का वो आनंद जरूर ले रहे हैं। हम लोग एडजस्ट कर लिया, दुनिया से भी एडजस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, हमको अभी कोई बंधन नहीं है, सबसे मुक्त हो गए हम लोग। भाई हम तो यही है, तो लोग भी समझ गए कि भाई इसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये कोई बदलने वाले नहीं है, पक्के है। पर बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी जब पावर ऑफ साइलेंस थोड़ा सा उनको महसूस होवे, धीरे धीरे। बट्टी ऐसे ही नहीं रखा है हमारी बहनों ने, हमारे दादियों ने जो आपको डेट्स दिया, आपको इनवाइट किए, आप लोग यहां तक आए, पर उसके पीछे यही है कि आप सब वापस यहां से जाएंगे तो आप बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, अपना अनुभव से उनको अनुभूति दिलाएंगे थोड़ा सा शांति का। कभी एक 5 मिनट आप आके देखिए। तो आश्रम में आए, वहां भी उनको वो वातावरण, थोड़ा साइलेंस को मेंटेन करने का, अपने आप में भी जहां भी आप रहते हैं वहां जो भी जिससे भी मिलते हैं तो उनको थोड़ा सा ये अनुभूति होवे, सचमुच इनको भगवान मिले हैं। नहीं तो हम भगवान को कहां से दिखाएंगे, ये जो चित्र ये वो वगैरह या गिफ्ट देके कि भाई ये भगवान है आप ये करो, नहीं, चेतन भगवान के बच्चे हैं। तो हम बच्चों से ही लोगों को थोड़ा सा शांति, थोड़ी खुशी, कोई बात नहीं, आपके सामने आप पूछे बिना वो अपनी कोई ना कोई दुख की बातें बताएंगे, दिखाएंगे। फिर भी जैसे संत लोग भी कहते हैं, सुख मिलेगी, सुख मिलेगा, अच्छा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो आपके मुख से जो शब्द निकलेगा वो बाबा पूरा कराएगा। कभी ये नहीं सोचना कि भाई मैं किसी के लिए कहूं कि नहीं नहीं आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, और बाबा कराएगा। बाबा को मुख नहीं है, कभी कभी हम हंसते हुए कहते थे बाबा आपको भी एक सिर होता तो सिर दर्द क्या होता है मालूम होता आपको। तो ऐसे ये भी आप जो वचन देंगे किसी को, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब बाबा कराएगा उनको, फिर उसको विश्वास आएगा कि ये बच्चे ये भगवान के हैं। बाबा बोलने नहीं आएगा, बाबा क्या एक एक के पास जाके बोलेगा? नहीं, आप जिससे भी मिलेंगे तो उनको आशीर्वाद देने का, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा कहते थे, सर्व जने सुखिनो भवन्तु, तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही शांति दूत है, दूसरों को शांति देने का हमको करना है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी लेके जा रहा है यहां से, वो है जो स्टेज पे भाषण करते हैं उनका एक ये रखते हैं नाम लिख के राजयोगी ऐसा करके, वो केवल उनके लिए नहीं है। इस भट्टी से आप लोग भी अपना ये टाइटल सर्टिफिकेट लेके जाना कि आप भी राजयोगी, जो समझते हैं अपने आप को राजयोगी हाथ उठावे। देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो थे ही, पर अब यहां से जब जा रहे हैं तो हम राजयोगी है। ये राजयोगी क्या है? योगी माना तो कोई संत को देखते हैं आप, बाबा ये योगी है, योग साधना करने वाले, स्वयं परमात्मा को याद करने वाले हैं, दूसरा नहीं। योगी उसी को कहा जाता है। शारीरिक तो योग जून 21 का है, पर एक और दिन भी अंतर्राष्ट्रीय योग है, दिसंबर 21 तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिक्लेयर कर दिया है, दिसंबर 21 जो है वो ध्यान दिवस है। क्योंकि इन्हों को मालूम पड़ा शरीर का करने से पहलवान तो बन जाएंगे परंतु योगी नहीं बन सकता है। योगी वो है जो साइलेंस में, खुशी में रहने वाले। तो हम बच्चों के प्रयास के कारण ही ये दिन भी फिक्स कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय, यूएनओ में हम लोग भी रिप्रेजेंट किया कि भाई शारीरिक योग ही नहीं है, ध्यान योग भी एक है जिससे आत्मा शांत स्वरूप हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी भी यहां से जाते हैं अपने आप को राजयोगी। राजयोगी क्यों है? राज करने का तो एक अलग है, पर योगी राज करता है तो अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर। कोई भी इंद्रियाएं अपने आप चले, जैसे सांस अपने आप चलता है, आंख जो है अपने आप ही जब भी चाहे कर लेता है, ऐसे चलने वाले नहीं है हम। हर इंद्रिया को हम अपना कंट्रोल में रखा है। दिखाते हैं श्री कृष्ण रथ चला रहा था, अर्जुन फाइट कर रहा था, आत्मा तो फाइट कर ही रहा है परंतु चला कौन रहे हैं? हम बाबा को चला रहे हैं। हम जब बाबा को अर्पण करते हैं ना, बाबा हम आपके हैं, सब कुछ आपका है, तो उसमें शरीर भी आ जाता है ना, वो भी हमारे हैं, हम शरीर नहीं है, हमारे हैं। तो बाबा को हमने शरीर को भी रथ को भी दे दिया है, तो बाबा रोज मुरली सुना करके इसको भी चलाना सिखा रहा है। तो इसीलिए इंद्रियों के जीतने के कारण ही हम राजयोगी है। दूसरे योग करने वाले बहुत है, बाबा भी हम लोगों को कहते थे, कभी कभी क्लास में ही बता देते थे, बच्चे दिन में एक आधा बार थोड़ा सा ये एक योग करो, एक ही योग, कौन सा? स्वयं ब्रह्मा बाबा समझो, शिव बाबा समझो, एक योग जरूर हमको करने लिए कहते थे, वो है शवासन कहते हैं। मतलब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो पक्का हो गया है, परंतु शरीर तो छोड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो वो कैसे होता? तो भीष्म पितामह को कहते थे कि भाई ये तो जब वो चाहेगा तो छोड़ता है। तो हमारा बाबा 18 जनवरी माना उत्तरायण कहते थे, इसके पहले नहीं छोड़ा, तो वो समय पर ही छोड़ा, तो जब छोड़ना चाहिए, जिसको शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाता है। बाबा भी ऐसे छोड़ा, डॉक्टर आने के पहले ही छुट्टी ले लिया था। तो इसी प्रकार हम सबको भी ये शरीर कभी न कभी किसी न किसी रूप से छोड़ना ही पड़ता है, तैयार रहना पड़ेगा। ये जो प्लेन में जा रहे थे अहमदाबाद में, क्या इन्होंने को पता था कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं? बाबा के भी पक्षे थे, उसमें दो युगल थे, बहुत अनन्य थे, सेकंड में शरीर छोड़ना पड़ा। तो मैं ये शरीर नहीं हूं ऐसा शरीर से अपने आप को मुक्त करने का भी अभ्यास कभी कभी करना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सोना भी एक शवासन टाइप में ही होता है, कोई कोई तो बस सोया नहीं नींद आ जाता है। तो इसी प्रकार शरीर से अलग होने का जो अभ्यास थोड़ा सा हम बच्चों को अभी करना होगा। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगा, ये भट्टी जो है आपको पूरा पूरा राजयोगी बनाकर ही छोड़ेंगे, बाकी तो बहुत कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे योग भी है जो तपस्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, वो सब अमृत वेला ही ठीक है। अमृत वेला में आप जितना अटेंशन होके अलर्ट होके, क्योंकि उस टाइम पर बाबा केवल हम बच्चों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। बाबा के लिए भी दुनिया नहीं है, करोड़ों आत्माएं नहीं है, लाखों आत्माएं हम बच्चे हैं। तो उस समय पर आप जो भी करेंगे वो ज्वालामुखी योग होगा, तपस्या होगा वो। तो आप लोग भी तपस्वी बनके, पक्के बनके, बाबा और आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा इस बार आप अकेले टिकट लेके आए थे, जाते जाते दो जाइए, टिकट वही बरसात में एक है, अकेले नहीं है आप, बाबा आपको नहीं छोड़ रहा है, हम ही बाबा को छोड़ दिए थे, पर बाबा आए ही हम बच्चों के लिए है। इस भट्टी से बाबा को अपना साथी बना करके, तो मुझे जो अभी समय पर सिंदूर, सिंदूर एक शब्द बहुत मशहूर हो गए थे, सिंदूर माना हम लोग बाबा के साथी है, आत्मा का बाबा साथी है। तो उनको किसी भी संबंध से आप समझो, हमारा सिंदूर है बाबा, तो हम बाबा को साथ रहेंगे, बाबा के साथ जाएंगे। बाबा को हमसे कुछ कराना है इस सृष्टि पे, इसीलिए अभी भी हमको रखा है। तो ये अपने मन में दृढ़ करके आप लोग जाएंगे, ऐसे आशा करता हूं। ओम शांति। भाई साहब कह रहे हैं कि किसी को कोई प्रश्न हो या जो
किसी को भी कोई प्रश्न हो कोई बात हो
तो आप हाथ उठा सकते हैं या आप आगे आएंगे तो आपको माइक देंगे. किसी को भी कोई भी ऐसा
आइए आइए जो भी प्यार से पुरुषार्थ से निमित्त या कुछ भी आपको मन.
ओम शांति. ओम शांति भाई जी. जब बाबा ने अव्यक्त हुआ है तो किसी को कुछ जानकारी नहीं था ना, तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो अचानक हुआ वो सब किसी के मन में या संकल्प में नहीं था. तो उस समय किसी को कुछ बहुत सारे प्रश्न होते थे. तो पहली बार जब पद्रमणि हुई अव्यक्त बाप दादा की, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं
जब
कैसे
बाबा, बाबा जब अव्यक्त पूरा हो गया तब की बात कह रहे हैं आप?
या
अच्छा
69.
अच्छा देखो, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए तभी भी हम लोगों ने नहीं समझा कि भाई बाबा हमसे छुट्टी ले रहे हैं. ऐसे ही अव्यक्त बाबा ने भी जब हमसे छुट्टी ले रहे थे तो एक ऐसे शब्द कहे थे. तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे विदाई. बाबा उठ करके बाहर गेट तक गए और कहा, बच्चे विदाई. ऐसे कभी भी बाबा ने नहीं कहा था. जैसे ही बाबा को याद प्यार दे करके गुड नाइट करके जैसे जाते थे, परंतु बाबा ने बाद में हम बच्चे सब समझे कि ये क्या हुआ, ये विदाई बाबा ने कैसे कहा, पर वो लास्ट था. और उसके बाद तो रूम में गए, दादियां मिले, सब ये हुआ, डॉक्टर को बुलाए, तब तक बाबा ने शरीर छोड़ दिया था. तो विदाई शब्द बाबा से हमको मिला था. ऐसे ही अव्यक्त बाबा की भी लास्ट शब्द आप आज भी देखेंगे तो उसमें भी समाप्ति शब्द एक है. ऐसा कभी भी बाबा ने नहीं कहा था समाप्ति. समाप्ति तो हर चीज का एंड का होता है, उसके बाद कुछ है नहीं. तो भगवान को जो भी हम बच्चों को ज्ञान देने का था, ऐसा भी नहीं है कि हमको मालूम नहीं था कि दादी की तबीयत नहीं था. एक बार तो आपको वो मालूम होगा, हम सभी दादी को मना करके, दादी आप बस दृष्टि दो, कोई बात नहीं, दृष्टि दो, ऐसा करके दादी को मना करके लेके आए. दादी स्टेज पर भी बैठ गई परंतु कुछ नहीं बोला, उठ के चली गई. वहां तक हेल्थ का प्रॉब्लम था. फिर वहां जाके गरम गरम कॉफी बना के दादी को दी ताकि दादी को थोड़ा सा बीपी हायर आवे, खुशी होवे, शरीर में शक्ति आए, ये करे. तो हम सब बैठ के देख रहे हैं, दादी आई संदल पर बैठी और चुपचाप उठ के चली भी गई. फिर दादी वापस आ गई, हम सब बच्चे जाग गए. दादी आप कुछ नहीं करना, बस दृष्टि दे दो, बाबा आके दृष्टि दे के चला जाए. हम सब दृष्टि के लिए प्यासे थे. तो बाबा आए, थोड़ा कुछ जो लास्ट में बोलने का है वो भी थोड़ा कुछ बाबा ने बोला. तो फिर लास्ट में एक शब्द भी बोल दिया कि समाप्ति. फिर भी हम बच्चे इतना उस टाइम पर हम अपनी खुशी में थे, अपनी लहर में थे, ये नहीं समझा कि भाई बाबा हमसे छुट्टी ले रहा है. और सचमुच ऐसा हुआ, जो बाबा नहीं आए उसके बाद। हम सब बाद में बैठ के हुशारी मारते थे कि देखो बाबा ने ऐसा कहा था करके, परंतु कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई अव्यक्त पार्ट पूरा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बाबा जब दृष्टि देता था, चाहे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बच्चे भी होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक सुई गिरे तो भी आवाज नहीं आए, ऐसी साइलेंस हमने देखा था। तो हमको यही आशा थी, अभी बाबा दृष्टि तो देगा, दृष्टि तो मिलेंगी हम लोगों को, परंतु बाबा ने समाप्ति कहा शरीर का, उसके बाद तो साइलेंस में ही रहे। मुझे याद है लास्ट में मैं बॉम्बे में गया था, वैसे मिलने जाते थे, तो लास्ट में जब मैं गया था, वो लास्ट विजिट में, तो हम सबको बताया गया था कि दादी बैठी है तो आपको दृष्टि देगी, आप दृष्टि ले लें, नजदीक नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों, कितने दिन है पता नहीं, 4 साल से दादी बॉम्बे में थी, हॉस्पिटल का नजदीक थी, खास दादी के लिए एक फ्लैट भी लिया था, सब कुछ किए थे। तो जैसे ही दृष्टि दिया तो दादी ने अपने हाथ यूं कर दिया, तो मैं तो थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा भाई अभी दादी हाथ यूं कर रही है मैं क्या करूं। तो मैंने नीलू दीदी की तरफ देखा, मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है। तो नीलू ने कहा नहीं नहीं आप भी अपना हाथ दो। तो मैंने भी अपना हाथ बाबा को दिया, तो जैसे हाथ बाबा ने लिया और वही हमारा जैसे लास्ट का हुआ। दादी की अवस्था उस समय पर क्या थी उसका भी एक परीक्षा हम लोगों ने देखा। तो दादी के जो रिलेशन है हमारी, दिल्ली की उस समय पर जोन इंचार्ज थी रुक्मिणी दीदी, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, और हम देखते थे दादी की अवस्था तो एकदम जैसे निर्लेप जैसे रहती थी, बिल्कुल अपने आप में अलग रहती थी। तो अभी वो समाचार उसको सुनावे तो उसका कहीं इफेक्ट ना हो जाए उसको, हम छोटे बुद्धि है, हम लोग जैसे ऐसे सोचते थे नीलू बहन जो ब्रह्मणी है दादी को इफेक्ट नहीं हुए, दादी को कुछ ऐसा नहीं लगे तो समाचार नहीं सुनाया। आखिर 10 दिन हुआ 15 दिन हुआ तो इनका भी मन दिल खा रहा था कि भाई हम सुनाया ही नहीं दादी को, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि लौकिक है। तो आखिर इन्होंने डिसाइड किया कि आज दादी को थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ये दादी बड़ी खुशी खुशी से जैसे शरीर त्याग करके बाबा के गोद में गई, ऐसे अच्छे शब्दों में ये करके जैसे खुशी खुशी जैसे सुनाने की कोशिश इन्होंने, जैसे ही बोला रुक्मिणी दादी का हाँ 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 वो मेरे से मिलके गई थी। दादी ने बोला कहते हैं कि वो तो मेरे से मिलके गई थी। तो आप समझ सकते हो कि उस समय पर दादियों की क्या अवस्था थी और कहां थे। इसी बात में मुझे मम्मा की भी याद आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय मैंने मम्मा के साथ बिताया था। लास्ट ट्रिप जो है बैंगलोर में 3 मास हमारे साथ रही थी मम्मा। तो मम्मा ने एक बार कार में जाने समय पर मम्मा से पूछा, मम्मा ये देखा इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, ये नया है अभी सिस्टम, टेक्निकली उन्होंने बहुत अच्छा बनाए थे वो, तो आपने देखी मम्मा। तो मम्मा ने उस समय पर एक ही शब्द कहा था, इस कलयुग की कोई भी चीज मम्मा को दिखती ही नहीं है। ये नहीं मम्मा देखती ही नहीं है, नहीं, मम्मा को दिखती ही नहीं है, क्योंकि मम्मा यहाँ है ही नहीं है। मम्मा को जब सेवा करने की होती तो मम्मा आती थी और सेवा करके फिर वापस बाबा के पास जाती थी। तो हम हंस के मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप तो अभी राधा बनेगी और ये तो आपको तो खुशी में नाचते होंगे। कहते नहीं, स्वयं भगवान अब आए हैं तो मैं उसके साथ हूँ, उसकी खुशी में हूँ, ये नहीं कि भी मैं राधा बनने का। मम्मा ने कहा नहीं। तो ये सब थोड़े से हम लोगों ने देखी है, तो दादियों का पुरुषार्थ भी और उनका जीवन का लक्ष्य भी, तो हम सबको भी अभी यही रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। पहले बाबा, ब्रह्मा बाबा मिलेंगे। ब्रह्मा बाबा का भी ये वायदा था हम बच्चों के लिए कि अंत में हर बच्चे से बाबा मिलेंगे, तो बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोला नहीं है अभी, खोलने के बाद तो सब जाएंगे, परंतु अभी खोला नहीं है। हम बच्चों के लिए बाबा मिलेंगे, इसके बाद हम बच्चे परमधाम जाएंगे, उसके बाद सतयुग में आएंगे। सतयुग में कौन आएंगे? 84 जन्म जिन्होंने लिया है, तो हर प्रकार से आत्माएं हैं। अब तो जैसे भक्ति मार्ग की आत्माएं हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, तो राजयोगी, राज ऋषि, जो सुबह सुबह बाबा के अलावा और कोई नहीं, ये है हम बच्चों का है। और भी किसी का कुछ है?
ओम शांति भाई जी। भाई जी छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जैसे हम बैच पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये पूरी धारणा होती है तभी पहना जाता है। अब कभी कभी देखो घर गृहस्थ में रहते हैं, हमें बाहर भी जाना होता है, खाना सिंपल है दाल रोटी, लेकिन एक पतित आत्मा के हाथ की खानी पड़ जाती है, तो हमें बैच इस टाइम में पहनना चाहिए नहीं, मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ। और एक इसमें ये भी है कि बैच जैसे शिव बाबा का होता है, ब्रह्मा बाबा का बैच होता है, लक्ष्मी नारायण का होता है, कि हमें शिव बाबा का लक्ष्मी नारायण का नहीं पहनना चाहिए, वो सिर्फ दीदी जो समर्पित है उन्हीं के लिए होता है।
बैज बाबा ने भी पहले एक त्रिकोण का बैज बनवाया था, जब मैं ज्ञान में आया था तो तभी मैंने कुछ पैसे बाबा को देने के लिए ले आया था, बाबा ने मना किया, मुझे नहीं, बैंक में रखो। तो उस टाइम पर हम सोचते थे तो विनाश हो जाएगा, बैंक भी सब जाएगा, मेरा तो सफल कैसे होगा। तो बाबा ने थोड़े ही दिन में मुझे कहा था कि आप ये कलकत्ता में भेज दो ये पैसा, ऐसा बाबा ने कहा। तो त्रिकोण में शिव बाबा का चित्र था, उसमें ज्योति पहला पहला था, वो बैज मैंने देखा था। परंतु जैसे जैसे बाबा के बच्चे बहुत बन गए तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का। तो इतने समय में लोग देखते थे, खुश होते थे, परंतु अब तो ये ही बैज जरूरी हो गई है कि नहीं तो हमको कहेंगे लोग ये आप तो वो किसी को मानते ही नहीं है भगवान है करके, तो आपको इनके लिए लक्ष्मी नारायण के लिए हो या राम के लिए हो कृष्ण के लिए हो भगवान आप मानते ही नहीं है, ऐसे बोलने शुरू हो गए हैं लोग। तो हम उनको ये दिखाते हैं, देखो हम क्या पहने हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का उसमें या त्रिमूर्ति का जो है, इससे हम लोगों को सनातन है ये तभी तो ये पहनते हैं, आप तो नहीं पहन रहे हैं, देखो हम पहने हैं। ये समय अभी ऐसा चल रहा है। समय की जो बात थी वो ये है कि अभी द्वापर युग से शास्त्रों को अपना आधार मान करके उसमें जो कहा गया है तो वही हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप क्या है, आप तो शिव का शंकर का अलग कर दिया है, ये है वो है। तो वो सब बातें बंद हो जाएगा। क्यों? हमको तो ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते हैं, एक ईश्वर है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनको शिवलिंग के रूप में सारे विश्व में याद करते हैं, सभी याद करते हैं, ईश्वर ज्योति स्वरूप है। बाकी जो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेवाय नमः, वो खुद ही बोलते हैं शंकर है महादेव। क्यों? उनको एक रूप है, जिसका रूप है, निराकार नहीं है वो, रूप है, तो उनको नाम देवता कहा जाता है। तो हम देवताओं का भी मानते हैं और ईश्वर एक है वो भी मानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को अभी समय के अनुसार, जिसको सनातन सनातन कहते हैं वो लोग, सिर्फ इस बात का थोड़ा सा कहते हैं कि भाई बिंदु नहीं लगाते हैं, परंतु हम ये कहते हैं कि स्वागत किसी को करते हैं तो पहले बिंदु लगाते हैं, और यहाँ आप सबका स्वागत ही बिंदु से हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भाई हमको बिंदु से कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिंदु लगाते ही है। इवन शरीर छोड़ते हैं तभी भी शरीर को भी हम एक बिंदु लगाते हैं। तो इसीलिए बिंदु लग गया या लगाते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो हम बिंदु को मानते हैं, सिर्फ इतना ही है शरीर को भूलने के लिए, क्योंकि ये तो कई बार बाबा हंसते बोलते थे तो आपको पूछेंगे ये सफेद क्यों पहनते हैं, बाबा आप जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या रंगीन लगाते हैं, तो सफेदी तो डालते हैं। हम उससे थोड़ा सा पहले इसका अभ्यास कर रहे हैं कि ये शरीर आज नहीं तो कल छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से लोगों को समय के अनुसार थोड़ा सा होशियारी से जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार सबका हमको खुश करने के लिए बैज जरूर चाहिए। बाबा ने ये भी कहा था, तो बैज देख के लोग कहते हैं कि ये क्या है, तो उनको पूछने के लिए आपसे एक मौका मिल जाता है उसमें, तो कभी कभी फिर उसको थोड़ा सा ज्ञान भी दे सकते हैं। ओम शांति।